الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فسبح باسم ربك العظيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو سورہ حاقہ کی بالکل آخری آیت، فسبح بسم ربک العظیم، یعنی پاکی بیان کر اپنے پاک رب کے نام کی، اپنے رب کے نام کی جو سب سے بڑا ہے. تو اس کی تفسیر معروف القرآن کے جو معروف مسائل ہیں، پیج نمبر 548 جو یہاں پر لکھا ہوا ہے، 548 پیج، تو اس سے پڑھ رہے ہیں ہم کہ حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فسبح بسم ربک العظیم، کہ اس سے پہلی آیتوں میں یہ بتایا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں فرماتے، جو کچھ ہے وہ اللہ کا کلام ہے. جیسے کہ یعنی سورہ حاقہ کے اندر جو مضمون پیچھے گزرا ہے نا، اس میں کون سی ایسی آیات تھیں کہ جس میں یہ بات فرمائی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں بات کرتے ہیں؟ کوئی بتا سکتے ہیں آپ ایسے کہ سورہ حاقہ کی وہ کون سی آیات ہیں جس میں یہ بات کہی گئی ہے، سمجھائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بات نہیں کرتے؟ جی آپ سے پوچھ رہے ہیں تاکہ آپ کی بھی کچھ پارٹیسپیشن رہے کلاس میں. ترجمہ ہم نے آپ کو پڑھایا، خلاصہ تفسیر آپ کو پڑھایا، اور ماشاءاللہ کافی دنوں سے چل رہا ہے یہ سب کا معاملہ. تو اب تھوڑا آپ لوگ بھی ذرا کوشش کریں آیات دیکھ کر کے کہ کون سی آیات ہیں. آیت نمبر بتا سکتے ہیں؟ ایک آیت یا دو آیت، دو آیتوں کا. نہیں پتا کسی کو آیت نمبر 44؟ باقی لوگ ایگری کرتے ہیں اس سے؟ انہوں نے جو نمبر بتایا ہے اسی کو دیکھ لیں، اسی کے آگے پیچھے، تو تھوڑی آسانی ہو جائے گی. سورت کے مضامین کے اوپر تھوڑا سا تو آنا چاہیے نا کنٹرول، کہ سورت کے اندر کیا کیا باتیں ہوئی ہیں. قیامت کے دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتانا شروع کیا، پھر اس کے بعد جو دنیا میں قیامتیں قائم ہوئیں مختلف قوموں کے اوپر، عاد اور ثمود، تو ان کے بارے میں پھر تذکرہ فرمایا کہ ان قوموں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے ہلاک کیا. پھر اس کے بعد پھر قیامت کے دن کا اپنا منظر دوبارہ سے بتانا شروع کیا کہ سور پھونکی جائے گی، اور جب سور یعنی پھونک دی جائے گی تو اس کے بعد پھر کیسے کیسے معاملہ ہوگا، کہ حساب کتاب ہوگا. پھر حساب کتاب کے اندر جس کے ساتھ جس کا نام ہے اعمال اس کے دانے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کیسے ریئیکٹ کرے گا، اور جس کا نام ہے اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، رائٹ، اور وہ کیسے جو ہے وہ ریئیکٹ کرے گا. ٹھیک ہے، تو یہ سورت کے مضامین تھے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ قسم کھا کر کے، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، یعنی ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی کائنات میں موجود ہیں انکلوڈنگ اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے سب کی قسم کھا لی. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، جو کچھ تم دیکھتے ہو اور جو تم نہیں دیکھتے ہو، انکلوڈنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ، بیکاز اللہ کو ہم نہیں دیکھتے تو اللہ تعالیٰ نہ دیکھنے والی چیزوں میں آ گئے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سب ہر چیز کی قسم کھا لی نا یہاں پر آیت نمبر 38 اور 39 میں، اور اتنی بڑی قسم کھا کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لقول رسول کریم، کہ یہ جو قول ہے یعنی قرآن کریم، یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، اور یعنی جبرائیل علیہ السلام کا قول ہے. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے قول لیا اور نبی علیہ السلام تک پہنچایا. تو یہ جو پہنچانے والے ہیں یہ کوئی جھوٹے نہیں ہیں، یہ کوئی بے عزت یا کم عزت والے نہیں ہیں، بلکہ یہ بہت کریم رسول ہیں. اور پھر نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا قول نہیں، جیسے تم میرے نبی کو شاعر کہتے ہو. قلیلا ما تؤمنون، تم بات نہیں مانتے ہو، صحیح. تو ولا بقول کاہن، اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، لیکن تم لوگ دھیان نہیں دیتے ہو. بلکہ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے. آیت نمبر 43، ٹھیک ہے، جیسے آپ نے ابھی لکھا تو 43 ہے یہ آیت نمبر اگزیکٹلی اگر دیکھا جائے تو آیت نمبر 43 بنے گی. لیکن یہ مضمون شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ مضمون آیت نمبر 38 سے شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ جو قول ہے قرآن مجید یہ نبی علیہ السلام کا قول نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، ٹھیک ہے. تو تمہید باندھ کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی، آیت نمبر 38 سے شروع کر دیا یہ معاملہ، یہ موضوع آیت نمبر 38 سے شروع ہو گیا تھا اور آیت نمبر 45 تک یہ بات چلتی رہی، ٹھیک ہے، بلکہ 45 تک بھی نہیں، 46 تک، اور بلکہ 47 تک بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا نا کہ اگر یہ اس کے اندر کوئی تبدیلی کرتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اگر کرتے تو ہم ان کو نہیں چھوڑتے اور کوئی بھی ان کو نہیں بچا سکتا پھر ہماری پکڑ سے. تو یہ بھی وہی بات چل رہی ہے نا کہ یہ قول ہماری طرف سے ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو یعنی پورا کلام بدلنا تو دور کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک حرف کی تبدیلی نہیں کری، ایک لفظ کی تبدیلی نہیں کری، رائٹ. تو بہرحال کمنگ بیک 548 پیج کے اوپر، کہ اس سے پہلی آیتوں میں یہ بتایا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں فرماتے، جو کچھ ہے 100% وہ اللہ کا کلام ہے، اور وہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے تذکرہ اور نصیحت ہے، صحیح. انہ لتذکرۃ للمتقین، تقوی اختیار والوں کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت نامہ ہے، یعنی اس سے تقوی والوں کو فائدہ ہوتا ہے، ان کو خیر ملتی ہے اس کلام کو سننے سے اور پڑھنے سے. مگر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان سب قطعی اور یقینی امور کو جانتے ہوئے تم میں سے بہت سے آدمی اس کی تکذیب بھی کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی بہت سارے انسان ایسے ہیں کہ جن کو یہ ساری باتیں پتہ ہیں کہ یہ کلام بالکل سچا ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گھڑا ہوا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے، لیکن جان بوجھ کر کے بہت سے آدمی اس کی تکذیب بھی کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے، اس کو جھٹلاتے بھی رہیں گے، جس کا نتیجہ آخرت میں ان کی حسرت و یاس اور عذاب دائمی ہوگا، ٹھیک ہے. اب یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو کہ جانتے ہیں کہ یہ کلام صحیح ہے لیکن پھر بھی اس کی مخالفت کرتے ہیں؟ ان لوگوں کے لیے ایک ٹرم ہے، کوئی بتا سکتا ہے ان لوگوں کے لیے کیا ٹرم استعمال کی جاتی ہے؟ جو کہ سب کو جانتے ہیں لیکن پھر بھی مخالفت کرتے ہیں، پھر بھی خلاف کرتے ہیں، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ لوگ جو جان بوجھ کر کے پھر بھی مخالفت کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، اس جواب کو میں غلط تو نہیں کہہ سکتا، ان کو منافق کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایک اور بھی ٹرم، کوئی اور ٹرم بتائیں. جان بوجھ کر، چلے جان نہیں، ان کو یہود کہا جاتا ہے. یہود تو کوئی، یہود تو ایک یعنی دین کا نام ہے نا، ایک ریلیجن کا نام ہے یہود یا یہودی قوم. ہم تو جنرل ٹرم کی بات کر رہے ہیں کہ یعنی یہود کی ڈیفینیشن تو یہ ہوتی ہے نا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے، اور نبی علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے. یہ ڈیفینیشن ہے یہود کی، ٹھیک ہے. لیکن ابھی ہم یہ تو نہیں پوچھ رہے ہیں نا کہ جو ایسا کرتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے، तो आप कहें यहूद, तो फिर ठीक है। नहीं, हम तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि जो के जानता है, जानने वाला, लेकिन फिर भी तकजीब करता है। जानने वाले को के लिए अरबी का क्या लफ्ज है? जानने को क्या कहते हैं अरबी में? इल्म। उर्दू में भी इल्म कहते हैं, अरबी में भी इल्म कहते हैं। तो जिसके पास इल्म होता है उसको क्या कहते हैं? आलिम, राइट? जिसके पास इल्म होता है, जो जानता है सारी चीजें, उसको आलिम कहते हैं, ठीक है? लेकिन फिर भी तकजीब करता है तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आलिम सू। आलिम सू, सू का मतलब होता है बुराई, गुनाह, ठीक है? तो ये आलिम होता है, लेकिन आलिम होने के बावजूद जो है वो हक का इनकार करता है, हक की मुखालफत करता है, ठीक है? तो ऐसे लोगों को ना आलिम सू कहा जाता है, ठीक है? अब ये आलिम सू ईसाइयों में भी हो सकते हैं, ये आलिम सू यहूदियों को, यहूदी भी आलिम सू हो सकता है कि सब कुछ जानता है लेकिन फिर भी जो है वो हक की मुखालफत करता है, तो यहूदी भी आलिम सू हो सकता है। उसी तरीके से मुसलमानों में भी ऐसे बहुत से हो सकते हैं कि जो कि सब कुछ जानते हैं लेकिन उसके बावजूद हक का साथ नहीं देते बल्कि बातिल का साथ देते हैं, ठीक है? झूठ का साथ देते हैं और सच का साथ नहीं देते, तो ऐसे लोगों को फिर आलिम सू कहा जाता है। तो ये आलिम सू जो है ना, ये आलिम की कैटेगरी का एक फर्द होता है। आलिम हमेशा दो किस्म के होते हैं, हमेशा हमेशा से दो किस्म के रहे हैं। एक को कहते हैं आलिम हक, एक कैटेगरी को कहते हैं आलिम हक, और दूसरी कैटेगरी को कहते हैं आलिम सू, ठीक है? तो आलिम हक को आलिम हक क्यों कहते हैं? कि वो इल्म तो रखता है, इसी वजह से तो वो आलिम है कि वो इल्म रखता है सारी बातों का, तफसील के साथ इल्म रखता है, उसको आलिम कहते हैं। हमारे जैसा इल्म नहीं, हमारे पास बहुत थोड़ा सा इल्म है, ठीक है? पार्ट टाइम इल्म जिसको कहते हैं ना, दीन एसेंशियल्स की क्लास ले ली, ऑनलाइन जो है वो कुछ किताबें पढ़ ली, ठीक है? या जो है बस वो अपनी सेल्फ स्टडी से आपने कुछ चीजें सीख ली, तो इन इन कामों को करने से कोई आलिम नहीं बन जाता, ठीक है? थोड़ा बहुत इल्म हासिल हो जाता है लेकिन आलिम कहलाने की के लायक नहीं होता वो बंदा। तो आलिम वो होता है जो कि फुल टाइम डेडिकेशन के साथ बाकायदा यानी एज अ प्रोफेशन इस इल्म को हासिल करे, ठीक है? अपना यानी अपना कैरियर बनाए इसको। कैरियर बनाना तो सभी समझते हैं ना, जैसे किसी ने डॉक्टरी मेडिकल साइंस को अपना कैरियर बनाया तो वो डॉक्टर कहलाता है, किसी ने इंजीनियरिंग को अपना कैरियर बनाया तो वो इंजीनियर कहलाता है, किसी ने लॉ को अपना कैरियर बनाया, लॉ की के कॉलेज अटेंड किया, यूनिवर्सिटी अटेंड करी और उसकी ट्यूशन पढ़ी और उसके एग्जाम्स दिए तो वो लॉयर कहलाता है, ठीक है? बिल्कुल इसी तरीके से जिसने अपने आप को डेडिकेट कर दिया होता है कुरान और हदीस और फिका और बलागा और मंतिक, ये सारी चीजें पढ़ने में, ठीक है? और उसने इसके लिए बाकायदा मदरसा भी अटेंड किया होता है, इम्तिहानात भी दिए होते हैं, सनद हासिल की होती है, ठीक है? और अपने आप को यानी वक्फ कर दिया होता है इस काम के लिए ना, ठीक है? बेशक उसको पैसे भी मिले इसके ऊपर, पैसे मिलना आपका मसला नहीं है, मसला ये है कि आपने अपना फुल टाइम लगाया है कि नहीं लगाया है, ठीक है? तो जो अपना फुल टाइम लगाता है दीन के इल्म हासिल करने में तो वो आलिम कहलाता है। हमने तो फुल टाइम नहीं लगाया ना, हम तो पार्ट टाइम पढ़ने वाले लोग हैं, इस वजह से हम आलिम नहीं कहला सकते, ठीक है? अब आलिम जब इंसान बन जाता है ना, अब उसके पास बहरहाल रास्ता तो होता है कि वो हक का रास्ता इख्तियार करे कि बातिल का रास्ता इख्तियार करे, ये तो फिर भी उसके सामने एक ऑप्शन होता है। कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि लोग उससे मसला पूछने के लिए आए, ठीक है? कि भाई आप हमें ये बताएं कि क्या औरत महरम के बगैर सफर कर सकती है कि नहीं कर सकती है, ठीक है? तो वो सुन्नत का मुतालिया करे, ठीक है, फिका की किताबों का मुतालिया करे और जवाब दे दे कि नहीं जी, महरम के साथ सफर करना जरूरी है, औरत बगैर महरम के सफर नहीं कर सकती, ठीक है ना? नबी अलैहिस्सलाम सलाम ने मना फरमाया, और इसके अंदर कुछ तफसीलात हैं कि भाई अगर ऐसी कोई सिचुएशन पैदा हो जाए, बहुत ही मजबूरी वाली सिचुएशन पैदा हो जाए तो फिर सफर करना वो तो मजबूरी कहलाएगा, लेकिन इसकी इजाजत नहीं है, आम हालात में इसकी इजाजत नहीं है, ठीक है? तो ये जो फतवा इसने बताया है ना, ये इसने कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो इसने समझा, जैसा इसने बात को समझा कुरान और सुन्नत से, वैसा इसने बता दिया उन खातून को, तो ये शख्स क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आलिम हक, ठीक है? ये क्या कहलाएगा? ये आलिम हक कहलाएगा। अच्छा, अब दूसरी सिचुएशन, दूसरा सिनारियो आपके सामने रखते हैं कि ये खातून जो आई, इन्होंने पूछा फतवा, तो इन्होंने कहा भाई फतवा तो ऐसे ही है कि नहीं, आम हालात में तो सफर नहीं कर सकती, मजबूरी तो वो मजबूरी होती है लेकिन आम हालात में सफर नहीं कर सकती। तो अब उन खातून ने कहा कि जी मुझे तो करना है, राइट, मुझे तो, मैंने तो एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है, अगर मैं नहीं करूंगी तो मेरा तो कुछ नुकसान हो जाएगा, ठीक है, और उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए मुझे तो, मेरे साथ तो कोई महरम है नहीं जो जा सके, ठीक है, तो अब जो है ना, आप ना कोई, आप ऐसा करें ना, मुझे फतवा दे देना कि मैं कर सकती हूँ सफर, ठीक है। तो अब वो आलिम साहब कहें कि नहीं जी, आपका तो कोई ऐसी मजबूरी तो नहीं है, तो मैं आपको कैसे फतवा दे दूं कि आप जो है वो बगैर महरम के सफर कर सकती हैं। तो अब वो खातून जो है ना, वो अपने पर्स से एक लिफाफा निकालें, ठीक है, एक एनवलप निकालें और उसके अंदर थोड़े से नोट रखे हुए हो, पहले तो लाल नोट होते थे, अब जो है पता नहीं ग्रीन नोट होते हैं, या है खूब सारे तरह नोट रखे हुए उस एनवलप के अंदर, और वो नोट जो है ना, वो साइड से जरा मुफ्ती साहब को पकड़ा दें। मुफ्ती साहब यूजली तो पर्दे के पीछे बैठते हैं, ठीक है, तो पर्दे के पीछे से जो है ना, मुफ्ती साहब को वो लिफाफा पकड़ा दें और फिर मुफ्ती साहब से पूछे, जी मुफ्ती साहब तो मुझे ऐसा फतवा मिल सकता है कि मैं सफर कर लूं? मुफ्ती साहब, हाँ जी, ये तो आपने बड़ा जबरदस्त सवाल पूछा है, और हाँ जी, ये आपकी कॉन्फ्रेंस जो है ना, वो इतनी अहम कॉन्फ्रेंस है कि अगर आप उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड नहीं करेंगी तो बड़ा हर्ज हो जाएगा, है, बड़ा हर्ज हो जाएगा, और हदीस मुबारका में तो ये है कि ला हर्ज फिद दीन, कि दीन के अंदर कोई हर्ज नहीं है, सही है, दीन में तो कोई हर्ज नहीं है, तो आपका चूंकि ना कॉन्फ्रेंस मिस अगर आप कर देंगी तो आपका हर्ज हो जाएगा, तो इस वजह से जो है ना, आप अटेंड कर सकती हैं कॉन्फ्रेंस बगैर महरम के, आप सफर कर सकती हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है, सिचुएशन एग्जाम्पल समझ में आ रही है। तो अब ये साहब जो है ना, ये साहब कहलाएंगे आलिमे सू, ठीक है, क्योंकि जो इनकी अपनी तहकीक थी बगैर लिफाफे के, बगैर लिफाफे की तहकीक क्या थी, नहीं कर सकती इस कॉन्फ्रेंस की खातिर सफर, ठीक है, लेकिन जब लिफाफा मिल गया तो कर सकती हैं, ठीक है, तो ये अमल करने वाला जो है ना, ये आलिम सू कहलाता है, ठीक है, इसको आलिम सू कहते हैं, ठीक है, कोई सवाल इसके ऊपर? तो हमें वैसे फ्रैंकली अगर कहा जाए ना, तो हमें इन दोनों में फर्क पता नहीं है कि आलम हक कौन होता है और आलम सू कौन होता है, ठीक है, तो इस वजह से ना हम बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर जाते हैं। हम ऐसे उलमा को जो कि आलम हक होते हैं वो ये काम नहीं कर रहे हैं जो आलम सू करते हैं, वो ये वाला काम नहीं कर रहे होते हैं कि दुनिया की शोहरत के लिए, दुनिया के माल पैसे के लिए वो दीन को बदल रहे होते हैं, ये नहीं करते वो आलिम, वो नहीं कर रहे होते ये वाला आलिम, लेकिन हम उनको फिर भी आलिम सू कहना शुरू कर देते हैं, ठीक है, हम उनको फिर भी आलिम सू कहना शुरू कर देते हैं। क्यों हम कहते हैं उनको आलिम सू? सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो जो फतवा दे रहे हैं वो हमारी समझ में नहीं आ रहा, राइट, उनका फतवा हमारी समझ में नहीं आ रहा या हमें पसंद नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि हमें पसंद नहीं आ रहा होता है ना उनका फतवा, इस वजह से हम उनको आलिम सू कह देते हैं, ठीक है, हालांकि वो बिल्कुल इखलास नीयत के साथ और अपने इल्म के मुताबिक सही फतवा दे रहे होते हैं, ठीक है, जैसा उन्होंने दीन को समझा होता है वो उसके मुताबिक एक फतवा दे रहे हैं, ठीक है, वो पैसा लेकर के दीन को बदल नहीं रहे हैं, वो दीन को बेच नहीं रहे, ठीक है, उन्होंने इखलास के साथ, अपने इल्म के साथ, इल्म और इखलास इन दोनों के साथ उन्होंने एक यानी अपना मौकफ बनाया है, एक मौकफ बनाया है, ठीक है, एक कंक्लूजन ड्राइव किया है उन्होंने और वो उसी कंक्लूजन को लोगों को बता रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा जो शख्स करता है ना वो आलिम सू नहीं होता, ठीक है, बेशक उसके मौकफ से आप एग्री ना करते हो तो ये आपकी मर्जी, आप उससे एग्री ना करें, लेकिन आप उसको आलिम सू नहीं कह सकते,
आप उसके ऊपर तोहमत नहीं लगा सकते कि जी ये जो कर रहे हैं ना तो ये तो शोहरत की वजह से ऐसा कर रहे हैं, ये तो माल पैसे की वजह से ऐसा कर रहे हैं, या ये तो हुकूमत हासिल करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है भाई, आपको क्या पता कि ये हुकूमत हासिल करने के लिए कर रहे हैं, शोहरत के लिए कर रहे हैं? आप तो बगैर दलील के, बगैर किसी सबूत के आप उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं ये। ठीक है, हकीकत हाल का तो आपको नहीं पता, आपने तफसील तो नहीं देखी, तफसील तो आपको मालूम ही नहीं है। तो यहाँ एक तो ये है कि भाई, एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि आलिम दो किस्म के आलिम होते हैं, आलिम हक भी होते हैं और आलिम सू भी होते हैं। ठीक है, ये बात भी पता होनी जरूरी है, लेकिन इतना इसका भी ख्याल रखना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी आलिम हक को अपनी कम समझी की वजह से, कम इल्मी की वजह से हम आलिम हक को आलिम सू कहना शुरू कर दें, जस्ट बिकॉज वो जो काम कर रहा है वो हमारे समझ में नहीं आता। ठीक है, तो ये चीज जो है ना, ये बहुत बुरी बन जाती है, क्योंकि किसी आलिम हक को आलिम सू कह देना अल्लाह ताला को शदीद नापसंद है। ठीक है, और अल्लाह ताला ना इसके ऊपर फिर जंग का ऐलान कर देते हैं, उस बंदे से जंग का ऐलान कर देते हैं। क्यों जंग का ऐलान कर देते हैं? इसलिए कि ये बात कुरान और हदीस से साबित है कि जो उलमाए हक होते हैं, जो उलमाए हक होते हैं, ये अल्लाह के औलिया होते हैं, उलमाए हक, राइट? जो पैसा लेकर के शोहरत की खातिर, माल की खातिर दीन को नहीं तब्दील कर रहे होते हैं ना, वो आलिम हक होते हैं। और आलिम हक अल्लाह के वली होते हैं, औलिया अल्लाह होते हैं। ठीक है, अब किसी औलिया में से, यानी किसी वली को अल्लाह ताला के जब कोई तोहमत लगाता है उसके ऊपर, राइट, इल्जाम तराशी करता है उसके ऊपर, तो अब ये शख्स जो है ना, इसके खिलाफ हदीस कुदसी के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान जंग है। ठीक है, कि मन आदा ली वलियन फआज़न्तुहु लिलहर्ब, कि जिसने मेरे वली के साथ दुश्मनी करी ना, ये तोहमत लगाना कोई दोस्ती में तो नहीं करता, तोहमत लगाने का मतलब है कि आपने दुश्मनी कर ली, तो जिसने मेरे वली के साथ दुश्मनी करी है मैं उसके खिलाफ ऐलान जंग करता हूं। ठीक है, इस वजह से ना उलमा के ऊपर तोहमत लगाने से पास रहना चाहिए, बहुत एहतियात करनी चाहिए। भाई इल्मी इख्तलाफ आप करें, बेशक करें, अगर आपके पास इल्म है इतना ज्यादा कि आप किसी आलिम से इल्मी इख्तलाफ करने के काबिल हैं, तो आप इल्मी इख्तलाफ कर लें। पहली बात तो हम जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं, हम में से तो किसी के पास इतना इल्म नहीं है कि हम किसी आलिम से इल्मी इख्तलाफ करें, हम में से तो किसी के पास इतना इल्म है ही नहीं। ठीक है, लेकिन कम से कम हम इतना कर सकते हैं, जिसकी हमें इजाजत है, कि हम किसी आलिम को फॉलो कर रहे हैं और वो आलिम जो है ना वो दूसरे उलमा से इल्मी इख्तलाफ रखता है। ठीक है, क्योंकि उलमा का आपस में इल्मी इख्तलाफ होता है, हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा। ठीक है, तो अब अगर हम किसी एक आलिम को फॉलो करते हैं कि जिसका किसी दूसरे आलिम के साथ इल्मी इख्तलाफ है, ठीक है, तो अब हम भी अपने आलिम के फॉलो करने की वजह से उन दूसरे आलिम के साथ इल्मी इख्तलाफ रखते हैं, अपने इल्म की वजह से नहीं, बल्कि जिन आलिम को हम फॉलो करते हैं उनको फॉलो करने की वजह से हम किसी दूसरे आलिम से इल्मी इख्तलाफ रखते हैं। ठीक है, तो ये तो जायज है। ठीक है, लेकिन इस इल्मी इख्तलाफ की वजह से किसी, यानी अपने से मुखालिफ जो आलिम है उनके ऊपर कीचड़ उछालना शुरू कर देना और उनको जो है वो, यानी उलमाए सू करार दे देना, इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं है। ठीक है, तो जो उलमाए हक होते हैं ना, वो तो वैसे भी इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं कि बेशक इल्मी इख्तलाफ किसी के साथ भी करें, लेकिन इसको जो है वो यानी जातियात की तरफ लेकर के ना जाएं। ठीक है, तो ये बात कहाँ से चली थी कि ये जो लोग होते हैं, जो तफसीर में लिखा हुआ है कि सब कतई और यकीनी उमूर को जानते हुए भी, यानी इतना तफसीली इल्म कौन रखता है? आलिम रखता है, जो कि कतई उमूर को भी जानता है, यकीनी उमूर को भी जानता है, फिर भी तुम में से बहुत से आदमी इसकी तकजीब करते रहेंगे, जिसका नतीजा आखिरत में उनकी हसरत व यास और अजाबे दाइमी होगा। और आखिर में फरमाया व इन्नहु लहक्कुल यकीन। ठीक है, कि बेशक ये, कि यानी ये बात बिल्कुल हक और यकीनी है। اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. یعنی جو اللہ کے دین کو جھٹلاتا ہے اس کے اوپر حسرت ہوگی. آیت نمبر 50 کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، کہ جو کفر کرنے والا ہے وہ حسرت میں ہوگا. اس بات کے بارے میں فرما رہے ہیں وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ، اور وہ جو ہے یقین کرنے کے قابل، کہ یعنی یہ بات بالکل یعنی حق ہے، یقینی ہے کہ کافروں کے اوپر حسرت ہوگی. ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی سوچنا شروع ہو جائے کہ پتہ نہیں کافر بھی شاید جنت میں چلے جائیں گے یا کافر بھی اطمینان سے رہیں گے، کوئی ان کے اوپر حسرت وغیرہ نہیں ہوگی. نہیں، اس میں بالکل کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ کافر جو ہیں جو بھی کفر کرے گا تو اس کے اوپر حسرت ہوگی یا اس کو حسرت ہوگی. ٹھیک ہے، اب کسی کا نام لے کر کے ہم نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے کہ وہ کافر ہے یہ کافر ہے. جیسے کہ مطلب اسپیشلی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے ٹھیک ہے، تو اس کا نام لے کر کے تو ہم کافر نہیں کہہ رہے نا یہاں پہ کہ نہیں یہ بندہ جو اس کا نام فلانا فلانا ہے تو یہ کافر ہے، بلکہ یہ اصول بیان کر رہے ہیں کہ جو بھی ایسے کام کرے گا اس کے اوپر حسرت ہوگی. ٹھیک ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہتا ہو، کوئی بھی اس نے اپنا نام رکھا ہو یا کوئی بھی اس نے اپنی جماعت کا نام رکھا ہوا ہو یا اپنے فرقے کا نام رکھا ہوا ہو، جو بھی نام رکھا ہوا ہو ٹھیک ہے، تو وہ اگر یہ کام کرتا ہے تو اس کے اوپر حسرت ہوگی. ٹھیک ہے، بے شک وہ ہمارے درمیان ہی کیوں نہ ہو، ہمارا جو ہم جس مسلک کو فالو کرتے ہیں یا ہم جس جماعت کو کا حصہ ہیں یا یہ کہ بس ہم اپنے آپ کو جو بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے، بے شک ہم میں سے کوئی ہو، لیکن اگر اس کے یہ عقائد ہوں گے تو وہ کفر کرنے والا ہی ہوگا اور اس کے ساتھ پھر حسرت والا معاملہ ہی ہوگا. تو یہ ایک جنرل اصول بیان کرنا کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، اب پن پوائنٹ کر کے کسی شخص کی طرف فرد کی طرف اشارہ نہیں کر رہے ہیں اس کے اندر، اور ہم یہ کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ یہ کرنا کہ کسی کو کافر قرار دینا، کہ کسی کا نام لے کر کے اناؤنس کر دینا کہ یہ شخص کافر ہو چکا ہے، مرتد ہو چکا ہے، اس کے لیے بہت زیادہ علم کی ضرورت ہوتی ہے، اور خالی علم بھی نہیں بلکہ علم کے ساتھ ساتھ ایک پوزیشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لیگل اتھارٹی کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے قاضی، کورٹ کا قاضی، اس کے پاس نہ صرف علم ہوتا ہے بلکہ اس کے پاس لیگل اتھارٹی بھی ہوتی ہے. اب ان دونوں چیزوں کے ساتھ وہ کسی کے بارے میں کفر کا فتویٰ نکال سکتا ہے، کیونکہ دونوں چیزیں اس کے پاس موجود ہیں، علم بھی ہے اور لیگل اتھارٹی بھی ہے اس کے پاس. ٹھیک ہے، یا یہ کہ اگر کوئی نان مسلم ملک ہے تو وہاں پر تو مسلم اسلامک کورٹس ہی نہیں ہوتے، قاضی نہیں ہوتے، تو اب وہاں پر یہ لیگل اتھارٹی کس کے پاس ہوتی ہے؟ یہ لیگل اتھارٹی پھر جو ہے نا وہ دار الافتاء کے پاس ہوتی ہے. دار الافتاء اس یعنی انسٹیٹیوشن کو کہتے ہیں کہ جہاں پر مفتی حضرات کا ایک پورا پینل موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک پورا جو ہے وہ گروپ موجود ہوتا ہے، پینل موجود ہوتا ہے، وہ سب جو ہے وہ تحقیق کر کے کسی ایک نتیجے پر کنسنسس کے ساتھ پہنچتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسی جگہ کو دار الافتاء کہا جاتا ہے. تو کسی اس طرح کے ریکگنائز بڑے دار الافتاء کی طرف سے اگر کسی شخص کا نام لے کر کے فتویٰ نکال دیا جائے کہ یہ شخص جو ہے وہ کافر ہو چکا ہے، تو اب اس فتوے کو ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے، لیکن کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس علم بھی ہے اور ایک کنسنسس والا ایک فارم ہے نا ان کے پاس، یعنی پورا مفتی حضرات کا پینل ہے یہاں پر، اور یعنی مشورے کے ساتھ اور بہت ہی افہام یعنی غور و فکر کے بعد پھر انہوں نے یہ فتویٰ نکالا ہے، تو اس وجہ سے ان کے پاس بھی لیگل اتھارٹی آ گئی. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں اب یعنی یہ بے شک حکومت کی طرف سے اپوائنٹڈ نہیں ہے، کیونکہ حکومت ایک مسلمان حکومت ہے ہی نہیں، تو مسلمان حکومت جو ہے وہ کیسے اپوائنٹ کرے گی کسی دار الافتاء کو، کیسے لیگل اتھارٹی دے گی؟ تو یعنی غیر مسلم حکومت تو لیگل اتھارٹی نہیں دے سکے نا، ایک خالصتاً مسلم حکومت ہو تب وہ کوئی اسلامک کورٹس بنائے گی، اسلامک کورٹس کے اندر قاضی رکھے گی اور اس قاضی کے پاس پر لیگل اتھارٹی ہوگی کہ وہ کسی کی تکفیر کر سکے. ठीक है, लेकिन नॉन मुस्लिम हुकूमत के अंदर तो ऐसा होगा ही नहीं। तो फिर नॉन मुस्लिम हुकूमत में अगर कोई कुफर करता है, कोई बहुत ही यानी ऐसा बुरा काम करता है जिसकी वजह से वो वाकई काफिर हो चुका है, तो फिर उसको कौन डिक्लेयर करेगा कि वो काफिर हो चुका है? मुसलमानों को बताना जरूरी है कि भाई ये शख्स जो है ना अब ये काफिर हो चुका है, अब आप इसके साथ मुसलमानों वाला मामला ना करें। ठीक है, उलमा को ये जरूरी है कि वो अवामुन नास को ही बात बताएं, ताकि कोई ऐसा ना हो कि जी अपनी बेटी उसके रिश्ते में दे दे, काफिर के साथ तो मुसलमान औरत की शादी नहीं हो सकती। कोई ऐसा ना हो कि उसको जो है वो मुसलमान समझ करके उसके साथ कोई काम करना शुरू कर दे। तो इस वजह से ना तकफीर करना जरूरी होता है, ठीक है, अगर ये बात साबित हो जाए कि वो शख्स काफिर है। लेकिन तकफीर करने के लिए आपको एक लीगल अथॉरिटी की, एक लीगल बॉडी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मुस्लिम मुमालिक, मुस्लिम मुल्क के अंदर ये एक इस्लामिक कोर्ट होगी, ठीक है, शरिया कोर्ट जिसको कहते हैं, और गैर मुस्लिम मुल्क के अंदर ये जो दारुल इफ्ताह होते हैं वो होंगे ये लीगल अथॉरिटी। ठीक है, तो आगे फरमाया कि सबके आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके फरमाया, फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, जिसमें इशारा है कि आप इन मुआनिद कुफार की बातों पर ध्यान ना दें। मुआनिद कुफार कौन होते हैं कि जो के बहुत ज्यादा दुश्मनी पर उतरे हुए होते हैं। ठीक है, इनाद कहते हैं ना, इनाद दुश्मनी को कहते हैं। ठीक है, तो मुआनिद उन कुफार को कहते हैं जो कि आप यानी मुसलमानों के साथ दुश्मनी भी कर रहे हैं, और यानी जाहिर है फिर मारपीट भी करते हैं या जुबानी जो है वो तकलीफ पहुंचाते हैं। हर काफिर जो है वो मुआनिद काफिर नहीं होता। ठीक है, बहुत सारे काफिर होते हैं जो कि पीस के साथ आपके साथ रह रहे होते हैं, आप ना ना मतलब वो आपको कुछ भी नहीं कहते, ठीक है, ना जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुंचाते हैं ना जुबान से नुकसान पहुंचाते हैं, बस बेशक वो आपके दीन को कबूल नहीं करते, वो आपके दीन को गलत समझते हैं, ठीक है, लेकिन साथ आपके साथ कोई ऐसा यानी अजियत पहुंचाने वाला मामला तो नहीं कर रहे हैं ना। ठीक है, तो उनको मुआनिद काफिर नहीं कहा जाएगा, उनको आम काफिर कहा जाएगा या कुफर इनकारी वाले काफिर कहा जाएगा। तो यहाँ पर किन कुफार की बात हो रही है जो कि इनाद रखते हैं आपके साथ। ठीक है, तो आप इन मुआनिद कुफार की बातों पर ध्यान ना दें और इनसे मगमूम ना हो। अल्लाह ताला तसली फरमा रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बल्कि अपने रब अजीम की तस्बीह व तकदीस को अपना मशगला बना दें कि यही इन सब गमों से निजात का जरिया है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ना नबी अलैहि सलाम को अपने महबूब को हर वक्त गाइड करते रहते हैं। ठीक है, कि आप को अगर ये वाले हालात पेश आ रहे हैं कि आपके दुश्मन जो है वो आपको अजियत पहुंचा रहे हैं, जिस्मानी अजियत और जुबानी अजियत, तो आप इसका ये मदावा करें। ठीक है, और मदावा क्या बताया कि अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें और तस्बीह और तहमीद करें। तो भाई नबी अलैहिस्सलाम को तो ये हुक्म बिल्कुल शुरू में ही दे दिया गया था कि आप अल्लाह ताला के नाम की तस्बीह करें, आप जो है वो नमाजें पढ़ें, तो फिर अल्लाह ताला बार बार क्यों रिपीट करवा रहे हैं? रिमाइंडर्स के लिए। ठीक है, रिमाइंड करवाने के लिए, इसलिए कि इंसान को रिमाइंडर की जरूरत होती है, अगरचे कि वो बात उसको पहले से मालूम है, ठीक है, और उसको आप पहले भी यानी हुक्म दे चुके हैं एक दफा, लेकिन इंसान के जहन से एक तो बात या तो निकल जाती है वक्त के साथ साथ, चीजें जो हैं वो जरा मदहम हो जाती हैं जहन के अंदर या निकल ही जाती हैं, तो रिमाइंड कराने से ना वो फिर से फ्रेश हो जाती हैं। ठीक है, तो चूंकि अल्लाह ताला और नबी अलैहिस्सलाम का रिश्ता क्या था कि अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम के शेख, ठीक है, जो नबी होते हैं ना उन नबियों के ऊपर तो कोई इंसान नहीं होता ना, कोई उनका गाइड नहीं होता, कोई उनका मेंटोर नहीं होता, कोई उनका यानी बताने वाला शेख नहीं होता इंसानों में से। ठीक है, तो उनका शेख कौन होता है? उनका शेख डायरेक्ट अल्लाह सुब्हानहू तआला होता है। ठीक है, अच्छा जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके शेख क्यों नहीं होते? कोई बता सकता है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लम के पास आते थे ना और आप सल्लम को चीजें सिखाते थे, तो वो क्यों नहीं शेख होते हैं? हालांकि इतने बड़े फरिश्ते हैं, इतने जलील कदर। हाँ बिल्कुल सही आपने जवाब दिया, क्योंकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम का मकसद का जो काम था ना वो नबी अलैहिस्सलाम को यानी यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने तौर पे कुछ भी नहीं कर सकते थे, उनके पास कोई इख्तियार नहीं था। ठीक है, वो एक बे इख्तियार तरीके से जो है वो नबी अलैहिस्सलाम तक सिर्फ कासिद का काम कर रहे होते थे। ठीक है, جو ان کو کہا جاتا تھا وہ بالکل یعنی بہترین امانتداری کے ساتھ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچا دیتے تھے. تو ایسا شخص شیخ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, یہ تو صرف ایک قاصد ہے. صحیح, اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ کے ان کا مقام بہت بڑا ہے, فرشتوں میں سب سے بڑا مقام ہے جبرائیل علیہ السلام کا, لیکن یہ تو بیسیکلی ایک میسنجر کے طور پر, صرف میسنجر کے طور پر, صرف ایک ڈاکیے کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معاملہ کرتے تھے. تو اس وجہ سے نا اللہ تعالیٰ یعنی نبیوں کے جو شیخ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں. اور دیکھیں شیخ کا کیا کام ہوتا ہے, شیخ کا کام اصلاح کرنا بھی ہوتا ہے غلطی کے اوپر, جیسے کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی ساری ایسی آیات رکھی ہوئی ہیں, سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں قرآن کے اندر, کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تھوڑی اصلاح فرمائی ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا, رائٹ, ایسا کیوں کیا, عبس و تولی پڑھ کے دیکھ لیں, ٹھیک ہے, یا اور بھی بہت سارے مقامات ایسے آتے ہیں کہ جن پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سمجھ کے مطابق کوئی قدم اٹھایا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو 100% اپروو نہیں کیا, اگرچہ کہ بہت محبت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح فرمائی, لیکن بہرحال اصلاح تو فرمائی نا, یہ تو نہیں کہا کہ جو آپ کر رہے ہیں بس آپ کر لیں میں کچھ بھی نہیں کہوں گا اس کے اوپر. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایسے مقامات پر جبکہ نبی علیہ السلام واز فیلنگ لو, ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کافروں کی تکلیفوں کی وجہ سے بہت پریشان تھے یا بہت جو ہے وہ غمگین تھے, تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے تسلی بھی فرمائی, ٹھیک ہے, ریمائنڈرز بھی دیے, ٹھیک ہے. تو یہ دونوں کام جو ہوتے ہیں وہ شیخ کے ہوتے ہیں کہ وہ تسلی یعنی انکریجمنٹ کے الفاظ بھی کہتا ہے اچھے کاموں کے اوپر, اور جہاں وہ یہ دیکھتا ہے کہ نہیں جی یہ تو یعنی کچھ اور ہی ڈائریکشن میں نکلتے چلے جا رہے ہیں, تو ان کو وہاں سے پھر ذرا روکنے کی بھی کوشش کرتا ہے کہ بھئی آپ غلط راستے کے اوپر آگے نہ بڑھیں, ٹھیک ہے, اس کو اصلاح فرمانا کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر صرف ایسے میسیجز نہیں دیے کہ بھئی آپ تو میرے نبی ہیں, ٹھیک ہے, تو میں تو آپ کے واسطے سے صرف نہ قرآن لوگوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں, تو اب جو کچھ قرآن کے اندر ہے نا وہ سب جو ہے لوگوں کے لیے, ٹھیک ہے, یعنی ایمان والوں کے لیے ہے یا کافروں کو وعید سنائی گئی ہے یا منافقوں کو جو ہے وہ برا بھلا کہا گیا ہے, یہ صرف ان کے لیے نہیں, وہ بھی ہیں قرآن کے اندر, وہ بھی آیات بے شمار ہے قرآن کے, بہت ساری آیات ہیں جن میں کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے, ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے, کافروں کو مخاطب کیا ہے, منافقین کو مخاطب کیا ہے, مشرکین کو مخاطب کیا ہے, لیکن اسی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی بھی بہت ساری آیات رکھ چھوڑی ہیں کہ جن میں اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو مخاطب کیا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے اندر کیا حکمت ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو میرے نبی جو تھے نا ان کو بھی گائیڈنس کی ضرورت تھی, ان کو بھی ایک بتانے والے کی ضرورت تھی, ان کو بھی ایک اصلاح کرنے والے کی اور تسلی دینے والے کی ضرورت تھی. تو جب بہترین انسان جو میں نے پیدا کیا ہے اس کو ان چیزوں کی ضرورت تھی, تو پھر تم اپنے آپ کو ان چیزوں سے کیسے مستثنا سمجھ سکتے ہو کہ مجھے کسی گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے, مجھے نہ کسی تسلی کی ضرورت ہے نہ مجھے کسی اصلاح کی ضرورت ہے, میں خود ہی جو ہے وہ اپنی اصلاح بھی کر لوں گا, میں خود ہی اپنے آپ کو تسلی بھی دے لوں گا, میں خود ہی جو ہے نا وہ شیطان کے دھوکوں سے بھی بچ جاؤں گا اور سب کچھ جو ہے میں خود ہی کر لوں گا. بھائی خود ہی کرنے کا اگر اتنا آسان ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ یہ سسٹم بناتے کیوں, ٹھیک ہے, نہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو یہ والا معاملہ کیا اس کو نہ قرآن کے اندر مینشن کرتے, ٹھیک ہے, اور نہ ہی جو ہے وہ باقی انسانوں کے اصلاح کے لیے نبی کو بھیجنے کی کوئی ضرورت تھی, جب انسان خود ہی جو ہے وہ کتاب کو پڑھ کر کے اپنی اصلاح کر لیتے انڈرسٹینڈنگ قرآن کے ذریعے سے, نہیں کہ بھائی قرآن کا ترجمہ پڑھو پھر قرآن کی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اور تفسیر بھی پڑھ لو, اگر بہت زیادہ تمہیں شوق ہو رہا ہے تو تفسیر بھی پڑھ لو اور خود ہی خود جو ہے وہ اس کے اوپر عمل بھی کر لو. اگر اتنا آسان ہوتا تو پھر نبی علیہ تو پھر یہ کیوں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے 124,000 انبیاء تو بھیجے, ٹھیک ہے, اور کتنے سارے ایسے انبیاء تھے کہ ان کے ساتھ کوئی کتاب نہیں تھی, ٹھیک ہے نا, صرف نبی آئے, لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک کتاب بھیجی کہ جس کے ساتھ کوئی نبی نہ بھیجا, ٹھیک ہے, جتنی کتابیں آئیں وہ نبی لے کر کے آئے نا, ٹھیک ہے, خالی کتاب کو نہیں بھیج دی انسانوں تک کہ جی پڑھو اور سمجھو اور عمل کرو, نہیں, ایک کتاب بھی ایسی نہیں بھیجی. کیا مطلب کہ ٹیچرز تو بھیجے بغیر بکس کے, جنہوں نے پرانی جو بکس آ چکی تھی ان بکس کی ہی باتوں کو سمجھایا, لیکن کوئی ایک بک ایسی نہیں بھیجی کہ جس کے ساتھ ایک ٹیچر نہ لگا ہوا ہو, ٹیچر نہ بھیجا ہو, ٹھیک ہے. تو بات کیا ہے اصل میں کہ हम बगैर टीचर के बुक को नहीं समझ सकते, ठीक है? और अगर बुक को बगैर टीचर के समझने की कोशिश करेंगे तो मोस्ट लाइकली हम गलत समझेंगे। क्यों गलत समझेंगे? क्योंकि शैतान मौजूद है और शैतान को बहकाना आता है, ठीक है? उसने पीएचडी से भी ज्यादा बड़ी बड़ी डिग्रियां ली हुई हैं, मजाक के लिए कह रहे हैं खाली, ठीक? यानी शैतान ने इसके अंदर एक्सेल किया हुआ है कि कैसे लोगों को बहकाना है। तो किताब पढ़ने से खाली ये नहीं होता कि ये शैतान जो है वो भाग जाएगा, ठीक है? क्योंकि किताब जो इंसान पढ़ रहा होता है बगैर टीचर के, तो शैतान उसको उस किताब ही का गलत मतलब समझाता है जिसके जरिए से वो बंदा गुमराह हो जाता है, ठीक है? वला सौफ युतीक रब्बुका फतरदा। अच्छा, तो ये वाली आयत इस डिस्कशन में कैसे हो रही है, मेरे समझ में नहीं आ रहा, यारा आप समझा दीजिएगा इस बात को। तो अल्लाह ताला बहरहाल इस आयत का तर्जुमा क्या बनता है कि अनकरीब हम आपको इतना देंगे कि आप राजी हो जाएंगे बेशक। लेकिन ये जो डिस्कशन हो रही है, एनीवेज आगे पढ़ते हैं कि और ये ऐसा है जैसा दूसरी जगह कुरान करीम में फरमाया है, वलकद नअलमु अन्नका यदीक सदरुका, कि बेशक हम जानते हैं कि आपका कल्ब, सदर जो है वो वैसे तो सीने को कहते हैं लेकिन सदर कह करके ना कल्ब मुराद दिया जाता है, कि आपका कल्ब जो है ना वो तंग होता है, बिमा यकूलूना, उन बातों की वजह से जो ये कहते हैं। फसब्बिह बिहम्द रब्बिका, बस आप तस्बीह बयान कीजिए और तहमीद कीजिए यानी हम्द बयान कीजिए अपने रब की, वकुम मिनस साजिदीन, और सजदा करने वालों में से हो जाइए। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। फरमाते हैं कि यानी हम जानते हैं कि आप इन कुफार की बेहुदा गुफ्तगू से दिल तंग होते हैं, इसका इलाज यह है कि आप अपने रब की हम्द में मशगूल हो जाएं और सजदा गुजारों में शामिल हो जाएं, उनकी बातों की तरफ इल्तिफात ना करें, ठीक है? तो यानी कुरान में अल्लाह ताला ने और मुकामात के ऊपर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरीके से यानी इन बातों को डील करने का तरीका बताया है कि अल्लाह ताला की हम्द सना करें। और जाहिर है कि आपके हमारे लिए भी इन द एंड हल तो यही है कि हम अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें और जो भी हमारे दुश्मन बने हुए हैं, ठीक है, तो उन दुश्मनों की बुराई यानी बुरी बातों का अपने दिल के ऊपर बहुत गहरा असर लेने की बजाय हम अल्लाह ताला के जिक्र के अंदर अपने आप को ज़्यादा मशगूल करें, और अल्लाह ताला का जिक्र जो है ना फिर वो उन गमों का मदावा बन जाता है, ठीक है? क्योंकि ये रूहानी तकलीफ़ें होती हैं, जो रूहानी तकलीफ़ों का अल्लाह ताला ने रूहानी हल ये रखा है अल्लाह ताला का जिक्र, ठीक है? तो एक बात बस याद रखनी चाहिए इसके अंदर कि यहाँ पर जो नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ना, ठीक है, तो यहाँ पर इस बात में कोई शक व शुबा नहीं है कि नबी अलैहिस्सलाम के कौन दुश्मन है, ठीक है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। जैसा कि पिछली आयत की तफसीर में क्या पढ़ा हमने कि ये बात बिल्कुल हक और यकीनी है, ठीक है ना, और इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि ये जो काफिर हैं जो आपकी बात का इनकार कर रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम की जो बात का इनकार कर रहे हैं, ये काफिर हैं, इनके ऊपर हसरत होगी और इस बात में कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। क्या मतलब कि नबी अलैहिस्सलाम के दुश्मन कंफर्म हो गए, ठीक है, कंफर्म हो गए कि हाँ ये नबी अलैहिस्सलाम के दुश्मन ही हैं, ठीक है, और ये गलती पर ही हैं, ठीक है? तो जब ये दुश्मन कंफर्म हो गए तो अब ये दुश्मन आपको जो बातें कह रहे हैं ना, तो इनका हल क्या है, इनकी दवा क्या है, वो अल्लाह ताला की तस्बीह और तहमीद है, ठीक है? लेकिन हमारे साथ क्या मामला होता है, हमारे साथ क्या मामला होता है, अगर आप में से कोई सोच करके बताए कि हम में और नबी अलैहिस्सलाम में यानी हमारे मामले में कि भी हम हमारे साथ जो दुश्मन ये सारे काम करते हैं तो हम तस्बीह और तहमीद करेंगे तो हमारा ये मसला हल हो जाएगा, ठीक है ना? लेकिन क्या गलती कर जाते हैं हम, अगर आप में से कोई बता दे कि हमारा मामला और नबी अलैहिस्सलाम का मामला एक जैसा क्यों नहीं होता,
कि भाई जो हमारे दुश्मन हैं तो उनकी बातों की जो अजियत हम अपने दिल में बर्दाश्त में फील करते हैं, तो हम भी तस्बीह और तहमीद करेंगे तो वो अजियत दूर हो जाएगी हमारी, लेकिन होती नहीं है दूर। तो क्या गलती कर जाते हैं हम उनकी बुराई करते हैं? नहीं, हम तो बुराई करते तो हैं, लेकिन हम सवाल ये नहीं कर रहे आपसे, हम ये पूछ रहे हैं कि भाई हम भी तस्बीह तहमीद अगर करें तो हमारा मसला भी दूर हो जाना चाहिए, लेकिन उमूमी तौर पर होता नहीं है दूर हमारा मसला, ठीक है? या ये कि हमारे लिए ये इलाज अभी एप्लीकेबल होता नहीं है, इससे पहले भी हमें कुछ करना पड़ता है, ठीक है, वो हम करते नहीं है, यानी हमें एक और स्टेप भी लेने की जरूरत पड़ती है, वो क्या? नहीं, चलिए मैं अपना सवाल शायद अच्छी तरीके से आपको बयान नहीं कर पा रहा हूँ, इस वजह से जाहिर है आप जवाब भी कैसे सही देंगी जब सवाल ही सही तरह से नहीं होगा। तो चलिए छोड़ें इस सवाल को, आपको इतना बताना जो एक्चुअली मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमारे साथ मसला ये होता है कि जिनको हम अपना दुश्मन समझ रहे होते हैं ना, अक्सर ऐसा भी होता है कि वो हमारे दुश्मन होते नहीं है, ठीक है, वो बुरे होते नहीं है, वो हमारे दुश्मन होते नहीं है, ठीक है, बल्कि हम किसी गलत फहमी की वजह से उनको अपना दुश्मन समझना शुरू कर देते हैं, ठीक है, यानी उनकी बात जो है वो हमारी इसलाह के लिए थी और हमने उसको दुश्मनी के रंग में देखा, ठीक है, तो अब तो भाई वो तो थे खैर ख्वाह, लेकिन हमने उनको दुश्मन समझ लिया, अब उनकी इसलाह वाली बातें हमारे दिल को चोट लगा रही है, ठीक है, अब हमारे दिल को जो चोट लग रही है तो अब हम तस्बीह और तहमीद करेंगे, तो हम किसी ऐसी चीज का इलाज कर रहे हैं जो कि मर्ज है ही नहीं, जो तकलीफ है ही नहीं, क्योंकि ये तो एक गलत फहमी की बुनियाद पर आपके दिल को तकलीफ हो रही है ना, राइट। नबी अलैहिस्सलाम के मामले में तो कोई गलत फहमी नहीं थी, वहां तो अल्लाह ताला ने कंफर्म कर दिया कि ये दुश्मन है, राइट, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि ये दुश्मन है, तो ये जो बात कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, तो आप तस्बीह और तहमीद करें, आपके दिल को तसल्ली हो जाएगी। हमारे यहाँ तो यही कंफर्म नहीं होता कि वाकई ये दुश्मन है कि नहीं है, हम गुमान करके बैठ जाते हैं कि ये हमारे दुश्मन है गलत फहमी की बुनियाद पर, ठीक है, या ये कि यानी कभी हम यानी कुछ और ही समझना शुरू कर, सही गलत फहमी ही चले इसकी इसकी रीजन बनती है, ठीक है, कि या कभी ऐसा भी होता है कि हम कुछ हमारे अपने जरा मिजाज भी कुछ जरा अजीब से होते हैं, ठीक है, कि हम जो है ना वो बातों को सही नहीं समझ पाते हैं, कुछ हमारे तखयलात ऐसे बने हुए होते हैं, कुछ हमारे तसव्वुरात ऐसे बने हुए होते हैं, या हम जो है वो गलत को सही और सही को गलत समझ रहे होते हैं, तो इस वजह से ना हम डिटर्मिन ही नहीं कर पाते सही तरीके से कि वाकई ये हमारा दुश्मन है, ठीक है, बस एक गुमान रख लेते हैं कि ये बंदा हमारा दुश्मन है, और फिर उसकी बातों के ऊपर जो है ना वो दिल के अंदर हमें तकलीफ होना शुरू हो जाती है। तो इस वजह से हमारा एक एक्स्ट्रा स्टेप ये भी होता है कि हम वाकई तहकीक तो करें ना, अनबायस्ड तहकीक तो करके पहले देख लें कि क्या ये वाकई हमारा दुश्मन है कि नहीं, ठीक है, फिर अगर कंफर्म हो जाए कि हाँ ये हमारा दुश्मन है, तो फिर उसके बाद उससे जो पहुंचने वाली अजियतें हैं तो उसका इलाज अल्लाह ताला से रुजू में तलाश करें, ठीक है, तस्बीह और तहमीद के अंदर तलाश करें। अच्छा, आगे चलें कि अबू दाऊद में हजरत उकबा इब्ने आमिर जोहनी की रिवायत है कि जब ये आयत फसब्बिह बिस्म रब्बिकल अजीम नाजिल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उसको अपने रुकू में रखो, और जब आयत सब्बिह रब्बिकल आला नाजिल हुई तो फरमाया कि उसको अपने सजदे में रखो। इसीलिए बइजमाए उम्मत रुकू और सजदे में ये दोनों तस्बीहात पढ़ी जाती हैं। जमहूर के नजदीक इनका पढ़ना और 3 मरतबा तकरार करना सुन्नत है, बाज हजरात ने वाजिब भी कहा है, ठीक है, यानी नबी अलैहिस्सलाम ने जब ये आयात सहाबा कराम को सुनाई तो साथ साथ जो है वो ये भी बता दिया कि इस आयत को अपने सजदे में रखो, ठीक है, तो इस आयत को सजदे में रखो का मतलब ये नहीं था, यानी सहाबा कराम ने इसको ऐसे नहीं समझा कि सजदे में जब जाएं तो فسبح بسم ربك العظيم فسبح بسم ربك العظيم فسبح بسم ربك العظيم، تین دفعہ پڑھیں؟ نہیں، یہ صحابہ کرام نے نہیں یعنی سمجھا اس بات سے کہ اس آیت کو اپنے سجدے میں رکھو، بلکہ کیا سمجھا؟ کہ اس آیت میں جو حکم دیا جا رہا ہے، اس حکم کے اوپر تم جو ریسپونس کرتے ہو نا، سب بحسم ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، رائٹ، سبحان ربی الاعلی کہنا، اس کو تم اپنے سجدے کے اندر ریپیٹ کرو، ٹھیک ہے؟ اس کو تم اپنے سجدے کے اندر ریپیٹ کرو. اور اسی طریقے سے جب سب بحسم ربی العظیم، تو اس کے اندر کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ سبحان ربی العظیم پڑھو، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں صحابہ کرام کی جو سمجھ ہوتی ہے نا، ہم ایکچولی اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ صرف قرآن کے جو الفاظ ہیں یا حدیث کے جو الفاظ ہیں، ان الفاظ کو ہم اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس وہ ماحول نہیں ہے، وہ بیک گراؤنڈ نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ صحبت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نہ تو عربی ہمیں اچھی طریقے سے آتی ہے، اور نہ ہی ہمارے پاس وہ صحبت اور وہ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں نہ ہماری اصلاح ہوئی بھی ہے، کچھ بھی تو نہیں ہوا نا. تو اس وجہ سے ہم ڈائریکٹلی قرآن کی آیات کو یا حدیث کو اپنی سمجھ کے مطابق اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے نا، تو ہم کچھ اور ہی کرنا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے قرآن اور حدیث کی جو سمجھ ہے وہ صحابہ کرام سے لی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے یہ بات وہاں پر بھی ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ صحابہ کرام کی جو سمجھ ہے دین کو، صحابہ نے جو جیسے سمجھا ہے نا، ہمارا تو صحابہ کے ساتھ بھی کوئی ڈائریکٹ رشتہ نہیں ہے، رائٹ؟ صحابہ کے زمانے کو بھی گزرے ہوئے 1300 سال گزر چکے ہیں، 1300 سال ہو چکے ہیں، ہمارا ہم نے صحابہ کی بھی صحبت نہیں اٹھائی، ٹھیک ہے؟ تو ہم تو ایون صحابہ کی بھی جو باتیں ہیں نا، ان کو بھی سمجھنے کے لیے ہمیں علماء کرام کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایون صحابہ کے بھی آپ بہت ساری باتیں اگر کتاب میں اٹھ کر کے بیٹھ کے پڑھنا شروع کرتے ہیں نا، تو ایون ان سے بھی جو ہے وہ ہم ڈائریکٹ اپنے لیے احکام نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے بھی ہمیں علماء کرام کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو بیچ میں اللہ تعالیٰ نے واسطے رکھے ہیں نا، یہ واسطے جو ہیں وہ ضروری ہیں کہ ہم ان واسطوں کو بائی پاس نہ کریں، ٹھیک ہے؟ ہم ڈائریکٹ جو ہے وہ کتاب اٹھا کر کے، قرآن بھی کتاب ہے، حدیث کی بھی کتابیں ہیں، صحابہ کرام کے اقوال بھی کتابوں کی شکل میں موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری کتابیں، ان کتابوں کو ہم ڈائریکٹ اٹھا کر کے ان سے جو ہے وہ اپنے لیے احکام لینا شروع کر دیں، تو یہ غلط راستہ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ گمراہی کی چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، بیکاز شیطان جو ہے وہ ایک اندیکھی شکل میں ہر وقت جو ہے نا وہ ہمارے خیالات کو جو ہے وہ مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. اسی وجہ سے علماء کرام کے اوپر ہم یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے علماء کرام کا محتاج بنایا، اور ہم کبھی بھی اپنے آپ کو ان سے یعنی مستغنی قرار نہیں دے سکتے کہ نہیں جی ہم تو بس کتاب پڑھیں گے اور کتاب کے اوپر عمل کر لیں گے، اللہ خیر صلاح، بس سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا. گمان کا علاج کو میوٹ کر سکتی ہیں. گمان کا علاج کیا ہے؟ تو گمان کا جو علاج ہوتا ہے نا، تو اس میں سب سے پہلے تو جی ہر علاج کے لیے سب سے پہلے دعا کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے ایک تو یہ دعا تو ڈیفینیٹلی مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ بدگمانی سے محفوظ فرما، غلط گمان سے محفوظ فرما، ٹھیک ہے؟ جب دعا مانگ لیتے ہیں تو اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے دوا کرنے کا، ٹھیک ہے؟ تو دوا کے اندر پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے گمان کا علاج کرنے کے لیے؟ تو دو چیزیں کرنی چاہیے. ایک تو ہمیں جو اللہ والوں نے ذکر کرنا سکھایا نا، تو ہمیں اس طریقے سے ذکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے دل کی جو یعنی برائیاں ہوتی ہیں نا، دل کے جو زنگ ہوتے ہیں، دل کی جو روحانی بیماریاں ہوتی ہیں، یہ روحانی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے. لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے نا، یہ بھی ہم کتاب اٹھا کر کے پڑھ کے نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ کتاب سے کے اندر بہت سارے مختلف طریقے موجود ہوتے ہیں، بہت سارے اذکار موجود ہیں. ہم رینڈملی کبھی یہ کر لیا، کبھی وہ کر لیا، کبھی کچھ ذکر کرنا شروع کر دیا، کبھی کچھ ذکر کرنا شروع کر دیا، اس طریقے سے علاج نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی علاج اس طریقے سے
नहीं होता कि सेल्फ मेडिकेशन, सेल्फ स्टडी के जरिए से आप जो है वो दवाएं फांकना शुरू कर दें और आपकी बीमारी दूर हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इस वजह से इलाज तो इसका जिक्र में ही है, लेकिन जिक्र कैसे करना है, कितना करना है, कब करना है, ये किसी डॉक्टर से पूछना होता है। ठीक है, और डॉक्टर्स कौन होते हैं, दीनी लाइन के ऊपर कौन डॉक्टर्स होते हैं, उनको मशायख कहा जाता है। ठीक है, तो गुमान का इलाज जो है तो जिक्र के अंदर, लेकिन ये जिक्र जो है वो मशायख से पूछ कर करना होता है। तो इस वजह से गुमान का इलाज क्या है, इसका जवाब ये देना होगा कि किसी शेख के साथ इस्लाही ताल्लुक बनाना और उसके फिर बताए हुए जो तौर तरीके हैं जिक्र के ना, उसके ऊपर फिर अमल करना उसकी गाइडेंस के अंदर रहते हुए। ठीक है, जब इंसान ऐसा करता है तो फिर उसका यानी रूहानी बीमारियों का इलाज होता है, जिनमें से के एक बदगुमानी होती है, उसका इलाज हो जाता है। अच्छा, इसके ऊपर चले कोई वो कहते हैं ना सितारों, सितारों का इल्म अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना किसी सूरत के अंदर, जायचा बनाना या सितारों का इल्म वगैरह, सितारों के पैटर्न में। तो बहरहाल या नजूमी जिस तरीके से जायचा बनाता है ना, तो अब हमें जो है ना, जो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको, आपके ऊपर तंज नहीं कर रहा बिल्कुल, ठीक है, बात समझाने के लिए कह रहा हूँ कि आपने जो लिखा है कि कौन सा जिक्र करना चाहिए, ठीक है, तो अब आपने क्या लिखा है कि यानी इसके अंदर मेरे पास कोई कोई नॉलेज नहीं है आपके बारे में। फहमीदा फरहीन आपका नाम है जो कि सामने डिस्प्ले हुआ है, ठीक है, दैट्स ऑल दैट आई नो। ठीक है, तो अब इसके ऊपर यानी आपको क्या क्या आपका मसला है, क्या आपकी ज़रूरत है, क्या आपको जो है वो कौन सा वाला जिक्र बताना चाहिए, किस चीज़ की आपको, किस चीज़ से फ़ायदा होगा, किस चीज़ से नुकसान होगा। अब आपके ये इस नाम के बेसिस के ऊपर कोई कोई यानी नजूमी का जायचा बना करके तो नहीं आपको बताया जा सकता ना कौन सा जिक्र करना चाहिए। ठीक है, आपके भी किसी डॉक्टर के पास जाएं, अंदर एक पर्ची लिख करके भेज दें कि जी मेरा नाम जो है ना वो फलाना फलाना है और मुझे जो है वो कौन सी दवाई खानी चाहिए, आपका क्या ख्याल है? डॉक्टर साहब आपको अंदर से एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के भेज देंगे, जी भेज देंगे डॉक्टर साहब, कि उस पे उस यानी आपने पर्ची के ऊपर सिर्फ ये लिखा है कि मेरा नाम ये है और मेरा सवाल ये है कि मुझे कौन सी दवाई खानी चाहिए। ठीक है, तो इसके ऊपर कोई अच्छा, अब आपने माशाल्लाह मजीद इंफॉर्मेशन ये दे दी दिल की सफाई के लिए। ठीक है, तो इसके ऊपर मिसाल ये देंगे कि आपने डॉक्टर साहब के ऊपर जो जो पर्ची भेजी है ना, तो आपने पर्ची के ऊपर ये भी लिख दिया है कि अपना इलाज करने के लिए मुझे कौन सी दवाई खानी चाहिए। ठीक है, क्या मतलब, आपने पर्ची पे क्या लिखा, अपना नाम लिखा और नीचे ये लिखा अपना इलाज करने के लिए मुझे कौन सी दवाई खानी चाहिए। तो इसकी बुनियाद पे आपको कोई दवाई दी जा सकती है? तो ये जो दिल की सफाई है ना, तो भाई ये तो सारा मामला ही दिल की सफाई है। ठीक है ना, ये ऐसे ही है जैसे आप कहें कि भाई मुझे इलाज करना है, मुझे कौन सी दवाई चाहिए, तो भाई कुछ बीमारी बताएंगे तो ये दिल की सफाई, ये सारी बीमारियां जो है ना इनका मजमुआ दिल की सफाई है, यानी दिल की बीमारियां सारी की सारी। ठीक है, यानी आप डॉक्टर को ये लिख करके दे रही हैं मेरी सेहत खराब है, मुझे बताइए मेरी कौन, मुझे कौन सी दवाई खानी चाहिए। ठीक है, तो डॉक्टर साहब कहेंगे भाई मेरे पास तो आते ही सारे के सारे सेहत की खराबी वाले लोग हैं। ठीक है ना, तो मेरा काम तो दवाई देना है, लेकिन खाली ये कह देना कि मेरी सेहत खराब है इस वजह से मुझे दवाई दीजिए, तो क्या ये काफी है प्रिस्क्रिप्शन लिखने के लिए? ठीक है, ऐसे नहीं हो। ठीक है, आपको तो तफसील बतानी पड़ेगी ना, सिम्टम्स बताने पड़ेंगे, जी मुझे खांसी ज्यादा आती है, या मुझे जो दर्द फलाना होता है, या मुझे जो है वो ये जो है वो मेरी कैफियत है, लोग जो है वो मुझे बताते हैं कि मैं ऐसा भी करती हूँ, मैं वैसा भी करती हूँ, ये सारी तफसीलात से पता चलता है। ठीक है, तो तफसीलात को लिख करके बताना पड़ता है, फिर उसके बाद जो है ना इलाज होता है। बाकी ये कि टॉनिक्स जो है वो बाजार के अंदर अवेलेबल है, तो टॉनिक्स तो हर कोई ले सकता है। ठीक है, तो शुरू जो है वो हम टॉनिक से करवा देते हैं, जिसको ये कहते हैं कि भाई अगर आप नियत करती हैं कि जी आप ज़िंदगी जो है वो तक़वा तहारत के ऊपर गुजारें और जो रूहानी बीमारियां हैं उनका इलाज कर लें, तो आप शुरू में जो है ना एक कॉमन नुस्खा है, एक कॉमन नुस्खा है, उसमें आपको किसी तफसील की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो कॉमन नुस्खे से आप इब्तिदा कर लें, लेकिन इस कॉमन नुस्खे को कुछ दिन करने के बाद फिर आपको तफसील बताने पर आना पड़ेगा। ठीक है, शुरू में कॉमन नुस्खा स्टार्ट कर लें, फिर उसके बाद तफसील पे आना ही पड़ेगा। कॉमन नुस्खा क्या है?
कॉमन नुस्खा जो है वो मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास मुख्तलिफ कॉमन नुस्खे होते हैं। जो हमारे मशायख हैं उनके पास एक कॉमन नुस्खा है, वो ये है कि जी आप रोजाना जो है ना कुछ मामूलात कर लिया करें, ठीक है। वो मामूलात ये हैं कि रोजाना सुबह शाम जो है वो इस्तिगफार की 100 दफा तस्बीह कर लिया करें, रोजाना सुबह शाम जो है वो दुरूद शरीफ की 100 दफा तस्बीह कर लिया करें, कुरान पाक की रोजाना तिलावत कर लिया करें। जाहिर है जिन दिनों में तिलावत करने की इजाजत होती है औरतों को, उन्हीं दिनों की बात हो रही है, तो कुरान की रोजाना तिलावत कर लिया करें, और हर वक्त जो है वो ध्यान रखने की कोशिश रखा करें अल्लाह ताला की तरफ कि इल्म और इरादे से कोई गुनाह ना करें, और कुछ देर के लिए लतीफ़ा कल्ब के ऊपर यानी अपने रूहानी कल्ब की डायरेक्शन में तवज्जो करके बैठ जाया करें, और नियत ये क्या करें कि वहां से अल्लाह अल्लाह की आवाज़ आ रही है और मैं उस आवाज़ को सुनने की कोशिश कर रही हूँ। ये 5 मामूलात हैं, ठीक है। ये कॉमन नुस्खा है, ये कॉमन नुस्खा हर एक को दे दिया जाता है कि जी आप शुरू करें इससे, लेकिन इस कॉमन नुस्खे से इलाज हो नहीं जाता, बल्कि इस कॉमन नुस्खे को इंसान कुछ अरसे जब करता है ना, फिर उसको आकर के अपनी तफसील बतानी पड़ती है कि असल में जो है ना मेरे साथ ये मामला चल रहा है, ठीक है। मैं किसी की तरक्की को बर्दाश्त नहीं कर सकती, ठीक है। मैं किसी को अच्छा आगे बढ़ता हुआ देखती हूँ तो मुझे दिल के अंदर मेरा दिल बंद होने लगता है, मेरी सांस घुटने लगती है, ठीक है। या ये कि मुझसे कुरान तो उठाया ही नहीं जाता, ठीक है। मुझसे तस्बीहात करना मेरे लिए मुमकिन ही नहीं है, ठीक है। यानी ये तफसीलात हैं, ये तफसीलात बताते हैं ना, फिर कहीं जाकर के इलाज होता है, ठीक है। तो जिस्मानी बीमारियों का जिस तरह हम इलाज करने के लिए इधर उधर भागते फिरते हैं ना, दौड़ते फिरते हैं और सारी तफसीलात बताते हैं ना, तो भाई जिस्मानी अमराज से ज्यादा बड़ी अहमियत, ज्यादा जो बड़ी बुराई होती है वो रूहानी अमराज के अंदर होती है। जिस्मानी अमराज की वजह से तो ज्यादा से ज्यादा इंसान कब्र के पेट में पहुंच सकता है ना, लेकिन रूहानी अमराज की वजह से इंसान जहन्नुम के पेट के अंदर पहुंच जाता है। तो किसकी हमें ज्यादा फिक्र करनी चाहिए और किसके इलाज के लिए ज्यादा दौड़ धूप करनी चाहिए, रूहानी बीमारियों के इलाज के लिए करनी चाहिए। उम्मीद है कि यही बात आपको समझ में भी आती होगी। बहरहाल टाइम ज्यादा हो चुका है तो इस वजह से तफसील की तरह से खत्म करनी है।